30 अक्टूबर दिन भर दिन सोमवार, मैं हूं रेहान फदल। सुप्रीम कोर्ट ने आधार की अनिवार्यता पर ममता बनर्जी की याचिका पर सवाल उठाए। भारतीय जनता पार्टी ने की ममता की आलोचना।
अगर बंगाल के मुख्यमंत्री भारत सरकार के कानून को नहीं मानेंगी, इसका मतलब अराजकता फैलाने वाले मुख्यमंत्रियों की सूची में उनका नाम आए।
उत्तर प्रदेश में सरकार ने मदरसों के पाठ्यक्रम में बदलाव की मुहिम शुरू की, उलेमा खुश नहीं।
और खास किसी कौम को टारगेट करके और आप अपने हुकूमत के सहारे पर गवर्नमेंट जो है मदारिस को टारगेट करे, तो ये एक अच्छी शुरुआत नहीं है, बल्कि ये आपस में यहाँ के भाईचारे को भंग करने वाला एक अमल है।
होंगे आपके पत्रों के उत्तर भी, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार, आदर्श राठौर से। आधार मामले पर सोमवार को हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से कड़े सवाल किए। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार से पूछा कि एक राज्य सरकार संसद द्वारा बनाए गए कानून के खिलाफ अपील कैसे कर सकती है। कोर्ट ने कहा कि अगर ममता बनर्जी निजी तौर पर याचिका दायर करती हैं तो हम विचार करेंगे। ममता बनर्जी ने कहा है कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करती हैं। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पूर्व चुनाव अभियान प्रबंधक पॉल मैनफोर्ट वाशिंगटन में FBI के दफ्तर पहुंच गए हैं। उन्हें प्रशासन ने आत्मसमर्पण करने के लिए कहा था। अमरीकी मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि मैनफोर्ट और एक पूर्व कारोबारी सहयोगी को पिछले साल हुए राष्ट्रपति चुनाव में संदिग्ध रूसी दखल की जांच के सिलसिले में आरोपी बनाया गया है। ये इस मामले में लगाए गए पहले चार्ज हैं। इससे पहले ट्रंप प्रशासन ने कहा था कि मैनफोर्ट ने कुछ ही समय तक कैंपेन मैनेजर के तौर पर काम किया था और उन पर आरोप लगने के बाद उन्हें इस्तीफा देने के लिए कह दिया गया था। स्पेन की सरकार ने कैटालोनिया के संस्थानों को अपने सीधे नियंत्रण में लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। कैटालोनिया की तरफ से स्वतंत्रता के एक तरफा ऐलान के बाद स्थानीय सरकार और संसद को भंग कर दिया गया है। कैटालोनिया के पूर्व राष्ट्रपति के करीबी सूत्रों ने BBC को बताया है कि वो इस समय बेल्जियम में हैं। वहीं स्पेन के अटॉर्नी जनरल ने कैटलन सरकार और संसद के सदस्यों के खिलाफ विद्रोह का चार्ज लगाने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा,
Como fiscal general del Estado, les doy cuenta de que en la mañana del día de hoy, el Ministerio Fiscal...
अटॉर्नी जनरल के तौर पर मैं बताना चाहता हूं कि कानून का पालन करते हुए संवैधानिक व्यवस्था के तहत नागरिकों के हितों की रक्षा के लिए पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने कैटालोनिया के प्रमुख नेताओं के खिलाफ बगावत, राजद्रोह और अन्य अपराधों के चार्ज लगाए हैं। दो साल में ऐसे कई काम किए गए जो हमारे संविधान के अनुरूप नहीं है। इनमें 27 अक्टूबर को स्वतंत्रता की एक तरफा घोषणा भी शामिल है। ये थे कैटालोनिया के अटॉर्नी जनरल के शब्द। इसराइली सेना ने गाजा पट्टी से उसके यहां तक बनाई गई एक सुरंग को उड़ा दिया है। इसराइली सेना के प्रवक्ता ने कहा कि यह सुरंग इसराइल की संप्रभुता का उल्लंघन कर रही थी और इसके लिए सैन्य कार्रवाई जरूरी थी। गाजा में फलिस्तीनी सूत्रों ने पुष्टि की है कि इसराइल की वायुसेना ने हमला किया है। गाजा में लंबे समय से चीजों को इसराइली नाकेबंदी से बचते हुए फिलिस्तीनी रिहायशी इलाकों तक पहुंचाने के लिए सुरंगों को इस्तेमाल किया जाता रहा है, मगर हाल में हुई घटनाओं में इसराइली बलों पर हमला करने के लिए फिलिस्तीनी लड़ाकों ने भी सुरंगों को इस्तेमाल किया है। वैज्ञानिकों का कहना है कि वायुमंडल में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड गैस का स्तर 2017 में रिकॉर्ड ऊंचे स्तर पर पहुंच गया है। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि इंसान की गतिविधियों और अलनीनियो की वजह से ऐसा हुआ है। WMO के महासचिव पेतेरी तालेस ने जिनेवा में कहा,
We have been breaking records in the concentrations of main greenhouse gases and annual growth of carbon dioxide.
हम मुख्य ग्रीन हाउस गैसों को बढ़ाने में रिकॉर्ड तोड़ते जा रहे हैं और पिछले एक साल में तो हमने कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को बढ़ाने में रिकॉर्ड तोड़ दिए। हमने इस एक साल में इससे पहले इतनी कभी बढ़ोतरी देखी नहीं। ये थे WMO के महासचिव के शब्द। बहरीन के विदेश मंत्री ने कहा है कि अगर कतर अपने पड़ोसियों की मांगे नहीं मानता है तो उसकी गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल की सदस्यता रद्द कर देनी चाहिए। शेख खालिद बिन अहम अल खलीफा ने ट्विटर पर कहा कि कतर की सदस्यता पर रोक लगाने के लिए कदम उठाए जाएंगे। बहरीन उन 4 अरब देशों में शामिल है जिन्होंने कतर पर इस्लामिक चरमपंथियों का समर्थन करने और ईरान से करीबी बढ़ाने का आरोप लगाया है। सऊदी अरब मक्का की मस्जिद में जमजम कुएं का जीर्णोद्धार करने जा रहा है। इस कुएं के पानी को मुस्लिम चमत्कारी मानते हैं। लाखों हाजी इस साल हर साल जमजम कुएं का पानी अपने साथ घर ले जाते हैं। BBC समाचार।
दिन भर में अभिवादन स्वीकार करिए रेहान फदल का। पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा कल्याणकारी योजनाओं में आधार की अनिवार्यता के खिलाफ मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी सरकार की याचिका पर सवाल उठाए हैं। आधार नंबर को अलग अलग सरकारी योजनाओं और फोन नंबर के साथ लिंक करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार से पूछा है कि एक राज्य सरकार संसद द्वारा बनाए गए कानून के खिलाफ अपील कैसे कर सकती है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने आधार को मोबाइल फोन के साथ लिंक करने वाली एक अन्य याचिका पर केंद्र को नोटिस जारी किया है। सुनिए जुबैर अहमद की रिपोर्ट।
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को आज सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ा झटका लगा। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी सरकार से पूछा कि एक राज्य सरकार संसद द्वारा बनाए गए कानून के खिलाफ अपील कैसे कर सकती है। अदालत ने ममता बनर्जी को सलाह दी कि वो आम नागरिक की हैसियत से आधार नंबर को योजनाओं से जोड़ने के मुद्दे पर अपील कर सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार से कहा, हम जानते हैं कि ये एक ऐसा मामला है जिस पर विचार किया जाना चाहिए, लेकिन पहले आप बताइए कि एक राज्य इसे कैसे चुनौती दे सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक संघीय ढांचे में कोई राज्य संसद के अधिकार को चुनौती देने वाली अपील कैसे दायर कर सकता है। कोर्ट ने कहा, ममता बनर्जी निजी तौर पर याचिका दायर करें, फिर हम उस पर विचार करेंगे। ममता बनर्जी ने कहा कि वो अदालत के फैसले का सम्मान करेंगी। फैसले के बाद भारतीय जनता पार्टी के नेता गिरिराज सिंह ने कहा,
अगर बंगाल के मुख्यमंत्री भारत सरकार के कानून को नहीं मानेंगी, इसका मतलब अराजकता फैलाने वाले मुख्यमंत्रियों की सूची में उनका नाम आए।
ममता बनर्जी ने कुछ ही दिन पहले कहा था कि वो अपना मोबाइल नंबर आधार कार्ड के साथ लिंक नहीं करवाएंगी। उन्होंने कहा था, भले ही मेरा मोबाइल कनेक्शन कट जाए, लेकिन मैं उसे आधार कार्ड से लिंक नहीं करवाऊंगी। इससे पहले भारत की सर्वोच्च अदालत ने आधार नंबर को पैन नंबर से जोड़े जाने के सरकारी पेशकश का समर्थन किया था, लेकिन साथ ही ये भी कहा था कि जिन लोगों के पास आधार कार्ड नहीं है, उन्हें फिलहाल चिंता करने की जरूरत नहीं। अदालत का कहना था कि आधार नंबर अनिवार्य नहीं है, लेकिन जिनके पास ये है, उन्हें इनकम टैक्स रिटर्न भरते समय इसका इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। कोर्ट ने कहा था कि लोगों ने डेटा लीक होने को लेकर जो चिंताएं जाहिर की हैं, सरकार को उसके बारे में भी कदम उठाना चाहिए। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने आधार को मोबाइल फोन के साथ लिंक करने वाली एक अन्य याचिका पर केंद्र को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस नोटिस का जवाब देने के लिए केंद्र को 4 हफ्ते का समय दिया है। जुबैर अहमद, BBC, दिल्ली।
उत्तर प्रदेश सरकार ने मदरसों के पाठ्यक्रम में बदलाव करने का फैसला किया है, जिसके तहत अब वहां यूपी बोर्ड की किताबों की बजाय NCERT की किताबें पढ़ाई जाएंगी। हालांकि कुरान और मजहबी किताबें पहले की तरह ही पढ़ाई जाती रहेंगी। सरकार के इस फैसले को कई मदरसे और वहां के शिक्षक सही बता रहे हैं, लेकिन कुछ का ये भी कहना है कि सरकार जानबूझकर मदरसों पर अपनी शर्तें थोप रही है। समीर आत्मंत मिश्र की रिपोर्ट।
सरकार ने मदरसों के पाठ्यक्रम को सुधारने के लिए 40 सदस्यीय समिति बनाई थी। उसी समिति की रिपोर्ट के आधार पर यह व्यवस्था शुरू की जा रही है। सरकार के इस फैसले की जानकारी खुद उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री डॉ. दिनेश शर्मा ने ट्वीट के जरिए दी है कि मदरसों में अब सरकार NCERT की किताबें पढ़ाने जा रही है। उनके मुताबिक इससे मदरसों के छात्र आधुनिक विषयों के साथ साथ आधुनिक स्कूलों की बराबरी भी कर पाएंगे। दिनेश शर्मा कहते हैं कि इस व्यवस्था से मदरसों में दी जाने वाली धार्मिक शिक्षा में कोई बदलाव नहीं आएगा। सरकार भले ही इस बारे में सफाई दे रही हो, लेकिन उलेमा का एक बड़ा वर्ग सरकार की नीयत पर संदेह कर रहा है, खासकर देवबंदी उलेमा। दारुल उलूम अशरफिया के मौलाना सालिम अशरफ कासमी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार के इस फैसले का विरोध किया है।
इस फरमान के अंदर दो रुखेपन की, जिद्दीपन की और एक खास कौम को, एक खास सिस्टम को टारगेट करने की बू आ रही है। ये कौन सी बात हुई, कभी कैमरों के जरिए से, कभी ऑनलाइन करने के जरिए से, कभी झंडा फहराना लाजमी होने के जरिए से। ठीक है, जो कौम के और जो दस्तूर है, हम उनका पालन करते हैं, एहतराम करते हैं, एहतराम करेंगे, लेकिन अगर आप आए जिद बंदी पर और ख़ास किसी कौम को टारगेट करके और आप अपने हुकूमत के सहारे पर गवर्नमेंट जो है मदारिस को टारगेट करें, तो ये एक अच्छी शुरुआत नहीं है, बल्कि ये आपस में यहाँ के भाईचारे को भंग करने वाला एक अमल है।
कासमी कहते हैं कि सरकार जितना ध्यान मदरसों पर दे रही है, यदि उतना प्राथमिक शिक्षा पर देती तो कहीं ज्यादा अच्छा होता। हालांकि कई मदरसे सरकार की इस नई पहल के समर्थन में भी हैं। मोहम्मद अतहर अब्बास काजमी मदरसा बोर्ड के सदस्य हैं और मेरठ के एक मदरसे में पढ़ाते भी हैं। उनका कहना है,
यूपी गवर्नमेंट का जो बेसिक शिक्षा का हमारे यहाँ सिलेबस है वही मदरसा बोर्ड के अंदर पढ़ाया जाता है। फर्स्ट से लेकर और 10th क्लास तक कम्प्लीटली वो सिलेबस मौजूद है। अब उस सिलेबस को हटाने के बाद में एनसीईआरटी के सिलेबस की बात हो रही है कि एनसीईआरटी के सिलेबस चुके हैं और वो नेट के ऊपर भी अवेलेबल है, उसको डाउनलोड करके आराम से पढ़ा सकते हैं और किताबें मुहैया हो सकती हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सिलेबस कोई भी हो, यूपी बोर्ड का सिलेबस भी बुरा नहीं है एनसीईआरटी के मुकाबले में, सिलेबस कोई भी हो अच्छा तब होता है जब उसका पढ़ाने वाला भी कोई मौजूद होता है।
काजमी दिनेश शर्मा की बात से इत्तेफाक रखते हैं कि सरकार के इस फैसले से मदरसों की मजहबी शिक्षा पर कोई असर नहीं पड़ेगा।
मदरसा शिक्षा के अंदर किसी तरह कोई हस्तक्षेप जो कहा जाता है वो नहीं हो रहा है। मदरसे की अपनी शिक्षा जो है, जो थियोलॉजिकल एजुकेशन है वो कम्प्लीटली वैसी ही है, उस पर कोई कमी नहीं है, उसी तरह रखी जाएगी। अलबत्त यूपी बोर्ड की किताबों को निकाल के एनसीईआरटी की बुक्स एंटर की जाए।
राज्य सरकार ने मान्यता प्राप्त मदरसों और प्राथमिक विद्यालयों में आधुनिक शिक्षा देने के लिए मौजूदा बजट में 394 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की है। शिक्षा विभाग के मानकों का पालन न करने के कारण पिछले दिनों राज्य के 46 मदरसों के अनुदान पर रोक लगा दी गई थी। समीर आत्मज मिश्र, BBC लखनऊ।
खबर सच है
अगर BBC पर है।
जुनैद हत्या मामले की सुनवाई कर रहे जज ने हरियाणा के एडिशनल एडवोकेट जनरल के खिलाफ मुख्य अभियुक्त की मदद करने के लिए कार्रवाई की मांग की है। एडिशनल एडवोकेट जनरल नवीन कौशिक मुकदमे के मुख्य अभियुक्त नरेश कुमार की मदद करने की कोशिश कर रहे थे, जबकि कानूनन वो ऐसा नहीं कर सकते। फैसल मोहम्मद अली की रिपोर्ट।
पिछले हफ्ते जुनैद हत्या मामले की सुनवाई के दौरान जज YS राठौर को लगा कि बचाव पक्ष के वकील के अलावा एक और व्यक्ति भी मुख्य अभियुक्त नरेश कुमार की मदद करने की कोशिश कर रहा है। ये शख्स बचाव पक्ष के वकील को गवाह जावेद खान से कौन से सवाल पूछे जाने चाहिए इस पर सलाह देते हुए दिख रहे थे। जज के पूछताछ करने पर यह बात सामने आई कि बचाव पक्ष की मदद कर रहे व्यक्ति हरियाणा सरकार के एडिशनल एडवोकेट जनरल नवीन कौशिक हैं। जज ने अपनी टिप्पणी में कहा कि नवीन कौशिक का ऐसा करना अनैतिक था क्योंकि वो राज्य सरकार के कानून अधिकारी हैं। जुनैद के पिता के वकील निब्राश अहमद ने BBC से कहा,
कोर्ट ने अपने ऑब्जर्वेशन लेकर के एक ऑर्डर पास किया था जिसमें ये लिखा गया कि ऑनरेबल पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट को ये लिखा गया कि इनके खिलाफ में एक्शन लिया जाए। साथ ही एडवोकेट जनरल के ऑफिस में लिखा गया कि इनके खिलाफ में एक्शन लिया जाए। साथ ही साथ बार काउंसिल ऑफ पंजाब एंड हरियाणा चंडीगढ़ को लिखा गया है कि फॉर इनके अगेंस्ट में नेसेसरी जो लीगल एक्शन बनता है वो इनके खिलाफ में किया जाए।
15 साल के जुनैद का केस हरियाणा राज्य बनाम नरेश कुमार चल रहा है और जाहिर है हरियाणा सरकार के ही एक अधिकारी अभियुक्त की मुकदमे में मदद नहीं कर सकते हैं। जुनैद की हत्या जून में एक लोकल ट्रेन में कर दी गई थी। हत्या के पहले अभियुक्तों ने कथित तौर पर कुछ धार्मिक टिप्पणियां भी की थी। BBC ने जब नवीन कौशिक से उनका पक्ष जानने के लिए संपर्क किया तो उन्होंने पूरे मामले को गलतफहमी की वजह से पैदा हुआ बताया। उन्होंने कहा कि वो अदालत में महज एक दोस्त को कोर्ट में भाषा के इस्तेमाल पर एक कानूनी मसौदा देने गए थे। नवीन कौशिक ने कहा,
तो क्योंकि मैं फरीदाबाद था तो मेरे पास कॉपीज थी मेरी गाड़ी में, तो मैं उनको फोटोकॉपी देने चला गया। वो उस समय कोर्ट में थे, मैंने जाके उनको हैंडओवर कर दी, उन्होंने वो जो है जज साहब को दे दी।
तो जज ने ये ऑब्जर्वेशन क्यों कर लिया कि आप उनको असिस्ट कर रहे थे?
इट्स आई थिंक रॉन्ग इम्प्रेशन ही केम अंडर बिकॉज आई हैंडेड ओवर फ्यू डॉक्यूमेंट्स टू मिस्टर विशाल जॉली।
उनका कहना था कि उनके पिता डेंगू की वजह से बीमार होकर फरीदाबाद के एक अस्पताल में भर्ती थे और इसी सिलसिले में वो फरीदाबाद में मौजूद थे। इस बीच जुनैद के परिवार वालों ने इस केस की जांच हरियाणा पुलिस की बजाय किसी और निष्पक्ष संस्था से करवाने की मांग की है। जुनैद के पिता के वकील निब्राश अहमद,
हम लोगों ने वहाँ जो जुनैद के डिसीज के जो फादर हैं जलालुद्दीन, उनकी तरफ से रिट पिटीशन दाखिल की है कि भाई इसमें जो पुलिस ने जो अच्छा रोल अदा नहीं किया है हमारा, जो होना चाहिए था, क्योंकि बेलेबल सेक्शंस लगा करके कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी है। अल्टीमेटली हमने पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट से ये मांग की है कि कोई इंडिपेंडेंट एजेंसी या कोई CBI एजेंसी को ये केस ट्रांसफर किया जाए और उसकी इन्वेस्टिगेशन प्रॉपरली और इम्पार्शियल तरीके से की जाए।
हरियाणा हाई कोर्ट में जुनैद मामले को CBI या किसी दूसरी जांच एजेंसी को दिए जाने पर 1 नवंबर को सुनवाई होनी है।
फैसल मोहम्मद अली की रिपोर्ट। ये बीबीसी है, आप दिन भर सुन रहे हैं रेहान फजल के साथ। भारत के प्राचीन शहर बनारस का जिक्र हो और संगीत के मशहूर बनारस घराने की बात ना हो तो ये थोड़ा अजीब सा लगता है। बनारस घराने के लोगों में पंडित किशन महाराज, बिस्मिल्ला खां और गिरिजा देवी सिलसिला काफ़ी लंबा है। आमतौर से माना जाता है कि शास्त्रीय संगीत में लोगों की दिलचस्पी कम हो रही है। क्या सोचते हैं इस बारे में वो लोग जो बनारस की संगीत की दुनिया से जुड़े हुए हैं?
मेरा नाम विकास महाराज है। मैं बनारस घराने का 14वीं पीढ़ी के रूप में प्रतिनिधित्व कर रहा हूं और 15वीं पीढ़ी हमारे बच्चे जो हैं वो भी संगीत लाइन में हमारे साथी हैं। और बनारस घराने का जो वादन शैली है वो बनारस के अखड़पन से जुड़ा हुआ है। बनारस जैसे अखड़ बनारस है उसी तरह हमारे संगीत भी अखड़ है और खुला बाज और खुले रूप से गान वादन हमारे यहाँ होता है। सच्चाई ये है कि हमारे जो बनारस घराने के बहुत सारे बच्चे हैं उन्होंने संगीत छोड़ दिया और अन्य अन्य लाइन में चले गए। वो देखिए नए जनरेशन जो हैं उनका जो बाहर देख रहे हैं वो चीज़ देखकर अंदर घर में आते हैं तो वही चाहते हैं घर के अंदर हो, तो उनको कम समय में ज़्यादा चीज़ चाहिए। हम लोगों का क्या था, रियाज करने बैठ गया, पता नहीं भविष्य में कभी मेरा नाम होगा कि नहीं होगा, ये श्योर नहीं था, मगर मेहनत किया और मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। अभी कुछ दिन पहले एक बहुत बड़े कलाकार ने ये कहा था कि अपने जीवन गुजारिश के लिए संगीत अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप उस पर निर्भर न रहें, मगर सच्चाई ये है कि आज तक हमने किसी भी कलाकार को जो संगीत से जुड़ा हुआ है भूखों मरते हुए नहीं देखा। क्योंकि संगीत जो है वो आध्यात्म है और आध्यात्म जब जहाँ पे आ जाते फिलॉसफी आ जाती है वहाँ पे न धर्म जात कुछ नहीं, ऊंच नीच कुछ नहीं रहता। हमारे पूर्वज जो है उनका संबंध बहुत सारे लोगों ने मुसलमानों से सीखा और मुसलमानों ने हिंदुओं से सीखा, जो वो परंपरा चली आ रही है साथ उठना बैठना भाईचारा ये मजहब से बड़े ऊपर की चीज़ है।
बनारस का संगीत घराना आज सोमवार है और आपके पत्रों के साथ हैं सरोज सिंह और राजेश प्रियदर्शी।
आपकी राय, नमस्कार, आपकी चिट्ठियों के साथ मैं हूं राजेश प्रियदर्शी और स्टूडियो में मेरे साथ हैं सरोज सिंह। वाह क्या बात।
इस बार हम शुरू करेंगे ईमेल के जरिए और ये पहला ईमेल जो लिखा है वो बुल्डाना महाराष्ट्र से है और नाम लिखने वाले का है एहसान असगर। उनका कहना है कि इस बार की जो विवेचना थी रेहान फजल की वो बहुत ही शानदार थी, लेकिन उन्हें एक शिकायत है। उन्होंने कहा कि अली का गुणगान करते हुए नज़र आ रहे हैं लेकिन जॉर्ज फोरमैन को नज़रअंदाज कर दिया उन्होंने पूरे कार्यक्रम में।
असगर साहब हमारे बहुत पुराने श्रोता हैं और अक्सर हमें ईमेल भेजते हैं, बहुत शुक्रिया आपका। कार्यक्रम जाहिर है कि मोहम्मद अली कैशियस क्ले पर था और सारा ध्यान उन्हीं पर केंद्रित था। फोरमैन निसंदेह बहुत ज़ोरदार मुक्केबाज थे, इसीलिए वो मुकाबला आज तक इतिहास में दर्ज है और लोग उसको याद करते हैं। आपको ऐसा लगा कि आपको फोरमैन के बारे में कम सुनने को मिला, लेकिन मेरा ख्याल है कि ऐसी चिट्ठियाँ हमारे पास ज़्यादा आती जो ये कहते कि कार्यक्रम अगर मोहम्मद अली पे था तो उसमें फोरमैन को इतना वक्त क्यों दिया जा रहा था। तो ये मेरे ख्याल से रेहान ने कोशिश ये की कि एक सीमित समय में जिसके बारे में कार्यक्रम है उस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाए, लेकिन आपकी चिट्ठी के लिए बहुत शुक्रिया और ये बात हम रेहान फजल तक पहुंचा देंगे।
आपने जिसका जिक्र किया अगली ही चिट्ठी उसी पर आधारित है, रेहान फजल साहब की विवेचना मोहम्मद अली पर मुझे शानदार लगी, ये कहना है शाहीन परवेज का चाईबासा झारखंड से। इन्होंने हमें ईमेल लिखा है और साथ ही उन्होंने कहा है कि मैं रेहान फजल साहब से गुजारिश करता हूँ कि अरब स्प्रिंग्स पर भी एक विवेचना लेकर आएँ।
बहुत सारे ऐसे विषय हैं और विषयों की सूची है जो लोग हमें अक्सर सुझाते रहते हैं, और ये सारे सुझाव हम रेहान फजल तक पहुंचाते रहते हैं ताकि जब हो सके, लेकिन विवेचना हफ्ते में एक ही बार हो सकती है और उसमें एक ही विषय होता है, इसलिए बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिन पर लोगों की फरमाइश तो होती है लेकिन मजबूरन हम वो फरमाइश पूरी नहीं कर पाते हैं।
अगला ईमेल जो है वो अंकुश संब्याल का है और इन्होंने नहीं लिखा है कि वो कहाँ से लिख रहे हैं, लेकिन उनकी एक राय है अपनी कि रेडियो सेक्शन जब वो पेज पर जाकर ओपन करने की कोशिश करते हैं तो उसमें उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है।
ये ऐसी शिकायत है जो होनी नहीं चाहिए, उनको उन्होंने अगर बताया होता कि वो किस तरह का ब्राउज़र इस्तेमाल कर रहे हैं, मोबाइल पे कर रहे हैं या डेस्कटॉप पे कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं, ताकि हम उसको सुलझाने की कोशिश करते। ये भी संभव है कि समस्या उनकी तरफ हो, उनके एंड पर हो, हमारे यहाँ ना हो, लेकिन ये भी हो सकता है कि वो हमारी समस्या हो। तो इस तरह की जब भी कोई तकनीकी शिकायत हो तो ज़रूर उसके डिटेल्स हमें लिखें, हमें बताएं कि आप क्या करने की कोशिश कर रहे थे, तो क्या दिक्कत आ रही थी, समस्या आ रही थी। इतना भर कहने से हम आपकी बहुत मदद नहीं कर पाएंगे।
अगला जो ईमेल है वो राजीव बिलैया का है। इनका कहना है कि जो कार्यक्रम वो नेट पर सुन नहीं पाते, अगर उसे संपादित कर ऐसा बनाया जाए कि रिपोर्ट पुनः प्रसारित हो पाए तो हमें बहुत अच्छा होता।
देखिए, जो संपादित करके दोबारा देने की बात है उसमें एक समस्या ये है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये कहेंगे कि उस कार्यक्रम में से हमें पूरा कार्यक्रम सुनना था। एक तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये कहेंगे कि हमें जो सुनना था वही हिस्सा आपने हटा दिया, और ये हमारे लिए बहुत मुश्किल है कि हम अलग अलग तरह के श्रोताओं की ज़रूरतों के हिसाब से कई सारे उसके संपादित अंश बनाकर पब्लिश कर सकें। और हमारे जो कार्यक्रम है उसको आप अगर आसानी से सुनना चाहते हैं तो कई विकल्प है। एक तो आप वेबसाइट पे सुन सकते हैं, दूसरे आप उनका पॉडकास्ट डाउनलोड करके सुन सकते हैं, और हमारे जो कार्यक्रम है उसको जिस वक्त वो चल रहे होते हैं उस वक्त आप फेसबुक लाइव के ज़रिए भी उनकी जो ऑडियो है उसकी स्ट्रीमिंग होती है तो वहाँ भी सुन सकते हैं।
अगला जो खत है वो है एसनाथ देवघर कॉलेज देवघर से। इनका आलोचना है इनकी, आपके द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम का जवाब नहीं होता, लेकिन कभी कभी कांग्रेस, इंदिरा, राहुल, इन सब के प्रति जो अपना मुंह है वो आप छुपा नहीं पाते, लेकिन साथ ही लिखते हैं कि मैं चाहता हूं कि सापेक्ष पत्रकारिता का मनोविज्ञान इस शीर्षक पर एक कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाए।
मीडिया से जुड़े कई विषयों पर हमने कई कार्यक्रम किए हैं। इनके सवाल के दूसरे हिस्से से मैं जवाब शुरू कर रहा हूँ। मीडिया के बहुत सारे मामलों पे हमने बहुत सारे कार्यक्रम बीच बीच में किए हैं। इंडिया बोल में हमने कई बार इस पे बहस आपको सुनवाई है, और जहाँ तक आपको ये लगता है कि कांग्रेस या इंदिरा गांधी या राहुल गांधी या सोनिया गांधी के प्रति किसी तरह का मोह है तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं यही सिर्फ एक वाक्य में ये गुजारिश करना चाहूँगा कि जो आलोचना है वो उसी की होती है पत्रकार की तरफ से जो निर्णय ले रहा हो, जो सत्ता में हो, जो सरकार में हो। और अगर आप 2014 के पहले के कार्यक्रमों को सुनेंगे तो हम मनमोहन सिंह की, सोनिया गांधी की, उन सब की भी रिपोर्टिंग उसी तरह से कर रहे थे जिस तरह आज अमित शाह और नरेंद्र मोदी के निर्णयों की करते हैं और आने वाले दिनों में भी करते रहेंगे, क्योंकि ये यही हमारा काम करने का तरीका है जो सरकार बदलने के साथ नहीं बदलता है। बहुत शुक्रिया आपका पत्र लिखने के लिए, और अब घड़ी इशारा कर रही है कि हमें आपसे विदा लेना चाहिए। हमें इसी तरह लगातार अपनी राय लिखकर भेजते रहें। चिट्ठी लिखने के लिए हमारा पता वही है। अगर आप डाक से चिट्ठी भेजना चाहें तो हमें लिखिए बीबीसी हिंदी सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 3035, नई दिल्ली 110003 पर। और अगर आप हमें ईमेल भेजना चाहें तो पता वही है hindi.letters@bbc.co.uk। नमस्कार।
झारखंड में 85 गांवों के लोगों ने कुल्हाड़ी के लिए गैस कनेक्शन कुर्बान कर दिया है। पूर्वी सिंहभूम जिले के इन गांवों में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन दिया जाना था, लेकिन वन विभाग ने इसके लिए कुल्हाड़ी जमा करने की शर्त लगा दी ताकि जंगलों को कटाई से बचाया जा सके। वहीं आदिवासियों ने यह कहकर कुल्हाड़ी जमा कराने से इनकार कर दिया कि यह उनकी परंपरा का हिस्सा है। न किसी ने कुल्हाड़ी जमा कराई और न ही किसी को गैस कनेक्शन मिल सका। सुनिए दलमा से रवि प्रकाश की रिपोर्ट।
पूर्वी सिंहभूम जिले के पटमदा प्रखंड मुख्यालय से 7 किलोमीटर दूर स्थित गांव का नाम ओप्पो है।
पंचायत गोबर घुसी। यह दलमा वन्य अभयारण्य के कारण इको सेंसिटिव जोन के तहत पड़ने वाले 85 गांवों में से एक है। इसके अलावा 51 और गांव हैं जो आंशिक तौर पर इस खास जोन में आते हैं। घने जंगलों के बीच से गुजरती एक पतली सी सड़क पुल पुलियों से होते हुए हमें यहाँ पहुँचाती है। लोग बताते हैं कि इन्हीं रास्तों से हाथियों का झुंड आता जाता है, कभी कभार भालू और लकड़बग्घे जैसे जानवर भी। इस कारण अधिकतर लोगों ने अपने घरों में कुल्हाड़ी रखी है। अब इसी कुल्हाड़ी को लेकर इन गांवों के हजारों लोग एकजुट हो गए हैं। मेरी मुलाकात गोबरघुसी पंचायत के मुखिया खगेंद्र नाथ सिंह से होती है। वे बीबीसी से कहते हैं,
हम लोग का जो परंपरा नियम है, यहाँ का कोई पीढ़ियों का जो हम लोग का ये कुल्हाड़ बोठीन कटारी जो रखते हैं, ये सिर्फ लकड़ी काटने के लिए हम लोग नहीं रखते हैं, बल्कि हम लोग का परंपरा यहाँ सांस्कृतिक का भी हम लोग का एक अलंकार है। ये हम लोग बिहार शादी में जैसे रखते हैं तरवाल कुड़हाल आदि हम लोग का हथियार।
दरअसल यह विवाद मुख्य वन संरक्षक आनंद मोहन शर्मा के उस बयान के बाद शुरू हुआ जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए अपनी अपनी कुल्हाड़ी जमा कराने की बात कही थी। उन्होंने कहा था कि लोगों को जंगलों की रक्षा का संकल्प लेना चाहिए और अपनी कुल्हाड़ी वन विभाग को दे देनी चाहिए। इसके बाद ग्रामीणों को मुफ्त गैस कनेक्शन, चूल्हा और एक साल तक मुफ्त में गैस सिलेंडर दिलाने की कवायद की जाएगी। उन्होंने बीबीसी से कहा कि मैंने लोगों से स्वेच्छा से ऐसा करने की अपील की थी।
ये कहा गया था कि भाई जैसे कि हम लोग एक तरफ ये दे रहे हैं तो गांव वाले भी आगे बढ़ के अपनी कुल्हाड़ी को अपना जमा कर देंगे। एक तरह से संकल्पित नहीं कहते हैं रक्षाबंधन का, वृक्षों के लिए भावनात्मक जुड़ाव होता है, संस्कृति की बात ही नहीं है।
सीसीएफ आनंद मोहन शर्मा यह नहीं बता पाते कि अगर ऐसी कोई शर्त नहीं है तो इन गांवों के चयनित 400 लोगों को अभी तक गैस कनेक्शन क्यों नहीं मिल सका। वहीं ओप्पो की लक्ष्मी सिंह कहती हैं कि हमें गैस कनेक्शन की कोई जरूरत ही नहीं है, हम आदिवासी लोग हैं और जंगलों से चुनकर लाई गई सूखी लकड़ियों के सहारे ही हमारा चूल्हा जलता है।
गैस के चूल्हा में हो जाएगा जो शादी, मेरा मान लीजिए जो मेरा लड़की को शादी हो जाएंगी तो गैस में तो नहीं होगा ना, कुल्हाड़ तो जरूरी पड़ेगा।
बहरहाल यह विवाद तो आज न कल सुलझा लिया जाएगा, लेकिन दलमा वन्य अभयारण्य के कारण इको सेंसिटिव जोन में आने वाले इन गांवों के लोगों की कई और समस्याएं भी हैं जो यहां पहुंचे बगैर नहीं समझी जा सकती। इस इलाके में सदियों से रहने वाले पहाड़िया, सबर, बिरहोर जैसी आदिम जनजातियां अब विलुप्त होने की कगार पर हैं। सरकार को चाहिए कि वह अपने वरिष्ठ अधिकारियों को इन गांवों में भेजे और कम से कम एक बार चीजों को इनकी नज़र से देखने की कोशिश करे। रवि प्रकाश, बीबीसी के लिए झारखंड के दलमा रेंज में।
और अब एक नजर दौड़ाते हैं खेल समाचारों पर।
खेल समाचारों के साथ मैं हूं सुमिरनप्रीत कौर। शुरुआत करते हैं क्रिकेट से। भारत और न्यूजीलैंड के बीच अंतर्राष्ट्रीय एक दिवसीय मैच की जो सीरीज हुई उसमें 3 मैच खेले गए, 3 में से 2 मुकाबले जीतकर भारत ने ये सीरीज अपने नाम की। मैन ऑफ द सीरीज रहे विराट कोहली। अब भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 T20 मैच होंगे। तो भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहला T20 मैच 1 नवंबर को दिल्ली में। चलिए अब बात करते हैं टेनिस की। स्विट्जरलैंड के रॉजर फेडरर ने अर्जेंटीन के जुआन मार्टिल डेल पोट्रो को हराया और जीता स्विस इंडोर्स चैंपियनशिप। दूसरी तरफ डेनमार्क की कैरोलिन वोज़नियाकी ने वीनस विलियम्स को हराकर जीता WTA का फाइनल सिंगापुर में। बात फॉर्मूला 1 की। मशहूर फॉर्मूला 1 ड्राइवर लुइस हैमिल्टन ने जीता मैक्सिकन ग्रां प्री। और जाने से पहले बात बैडमिंटन की। भारत के किदाम्बी श्रीकांत ने जीता पहले डेनमार्क सुपर सीरीज और हाल ही में जीता फ्रेंच सुपर सीरीज। इस जीत के साथ उन्होंने एक साल में 4 सुपर सीरीज टाइटल्स जीते और ऐसा मुकाम हासिल करने वाले वो चौथे बैडमिंटन प्लेयर हैं। खेल की दुनिया से फिलहाल इतना ही।
और सभा के अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
बीबीसी समाचार। आधार मामले पर सोमवार को हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से कड़े सवाल किए। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार से पूछा कि एक राज्य सरकार संसद द्वारा बनाए गए कानून के खिलाफ अपील कैसे कर सकती है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पूर्व चुनाव अभियान प्रबंधक पॉल मैनफोर्ट वॉशिंगटन में FBI के दफ्तर पहुंच गए हैं। उन्हें प्रशासन ने आत्मसमर्पण करने के लिए कहा था। अमरीकी मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि मैनफोर्ट और एक पूर्व कारोबारी सहयोगी को पिछले साल राष्ट्रपति चुनाव में संदिग्ध रूसी दखल की जांच के सिलसिले में आरोपी बनाया गया है। स्पेन की सरकार ने कैटलोनिया के संस्थानों को अपने सीधे नियंत्रण में लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। कैटलोनिया की तरफ से स्वतंत्रता के एक तरफा ऐलान के बाद स्थानीय सरकार और संसद को भंग कर दिया गया है। इसराइली सेना ने गाजा पट्टी से उसके यहां तक बनाई गई एक सुरंग को उड़ा दिया है। बीबीसी समाचार।
दिन भर को यही विराम देते हैं। स्टूडियो संभाल रहे थे राजेश चौहान, रेहान फजल को सभी साथियों के साथ इजाजत दीजिए। नमस्कार।